अध्याय चार आश्रम व्यवस्था विकास एवं तुलनात्मक महत्व भूमिका मानव जीवन की सुव्यवस्था एवं अंतर्निहित शक्तियों के विकास एवं समायोजन हेतु प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रियों ने वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था का गठन किया था। वर्ण व्यक्ति के गुण के आधार पर उसकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए तो आश्रम उसके श्रम प्रसाद का आकलन करते हुए गठित किए गए। आश्रम व्यवस्था का गठन करते हुए हिंदू धर्म शास्त्री ने जीवन को 100 वर्ष का मान लिया। सदाय वह पुरुष जीवन सर्वदा सतम उनकी मान्यता थी कि जीवन एक यात्रा है जो जीव के साथ प्रारंभ होती है तथा परम धाम की प्राप्ति से समाप्त होती है। यात्रा लंबी व श्रम साध्य है, अतः इसके श्रम या थकान से विश्राम के लिए आश्रम की आवश्यकता देख इसकी व्यवस्था की गई। इस सद सरद जीवन काल को धर्म शास्त्री ने 4 वर्ग आश्रमों में इस प्रकार विभक्त किया कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष पुरुषार्थ संवर्धन का मार्ग प्रशस्त है। इस प्रकार शारीरिक विकास एवं शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य धर्मतः अर्थ एवं काम संवर्धन के लिए गृहस्थ शक्ति धर्म संवर्धन के लिए वानप्रस्थ अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई थी। नंबर 1 ऋग्वैदिक युग में आश्रम। इस व्यवस्थित रूप में आश्रम की कल्पना ऋग्वेद में नहीं मिलती किंतु यत्र तत्र ऐसे अस्पुष्ट प्रसंग अवश्य मिलते हैं जो शिक्षा व्यवस्था और गृह जीवन आदि कतिपय पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण स्वरूप बृहस्पति को ब्रह्मचर्यत्व के कारण जुहू नामक पत्नी के प्राप्त करने का प्रसंग है तो पावमान शुद्ध सीखने वाले उत्तम भोजन व जल की व्यवस्था का उल्लेख करता है। मानसिक चंचलता के कारण पढ़े हुए पाठ भूलने का तो दादुर सूक्त में शिष्य द्वारा आचार्य की ध्वनि का अनुकरण करने का उल्लेख है। ये उदाहरण ऋग्वैदिक समाज की शिक्षा का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार गृह एवं गृहपति के अनेक प्रसंग ऋग्वेद में मिलते हैं। विवाह का वह मंत्र जिसमें कन्या के हाथ पकड़ने की बात कही गई है गृहस्थ के कल्पना के द्योतक है, किंतु इनसे आश्रम व्यवस्था की पुष्टि नहीं होती। वरन ऋग्वैदिक समाज में गृह एवं परिवार तथा शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा स्पष्ट होता है। इन उदाहरणों से भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ प्रचंड रूप में वानप्रस्थ व संन्यास से प्राचीन है। ऋग्वेद में वानप्रस्थ एवं संन्यास शब्द नहीं मिलता। तांडव महाब्राह्मण में वैखाना शब्द मिलता है किंतु इन्हें इंद्र का प्रिय होते हुए भी उनके वध का उल्लेख है। धर्म सूत्र एवं स्मृति वैखानस को वानप्रस्थ का पर्याय स्वीकार करते हैं, अतः वैखानस ने वानप्रस्थ का विकास हुआ होगा ऐसा विश्वास किया जा सकता है। ऋग्वेद में यति शब्द मिलता है जो सन्यासी का समानार्थक है, किंतु तैतरीय संहिता का यह वर्णन कि इंद्र से यतियों को साल वृक्षों के समूह फेंक दिया जो उन्हें उत्तर वेदी के दक्षिण में निगल गए। यही कथा लघु परिवर्तनों के साथ काठक संहिता ऐतरेय ब्राह्मण कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलती है। यतियों को अरुणमुख कहा गया है। अथर्ववेद में इंद्र द्वारा यतियों के वध का उल्लेख है, अतः यति ऋग्वैदिक आर्य समाज में प्रिय नहीं थे। यही कारण है कि इन्हें इंद्र द्वारा मारे जाने का प्रसंग है। नंबर 2 ऋग्वैदिक समाज में यति एवं मुनि। ऋग्वैदिक में यतियों के अतिरिक्त मुनियों के प्रसंग भी मिलते हैं। मुनियों वात राशना पिंड पिशंगा वस्ते मलह अर्थात ये मुनि वात वैशिष्ट अर्थात नग्न पीले एवं मल युक्त वस्त्रों से घूमते थे। इंद्र को इन मुनियों को मुनियों का सखा कोष्टक में मित्र कहा गया है। इंद्रो मुनि नाम सखा है। तैतरीय अरण्यक में वात रचना हवा ऋषय शर्मणा ऊर्ध मनियों का भी उल्लेख है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि सन्यासियों से मिलते जुलते व्यक्ति उस युग में ज्ञान थे जो धूक धूसरित होने वाले केसरिया वस्त्र धारण करने तथा मुनि नाम से जाने जाते थे। विविध सन्यासियों की उत्पत्ति तैतरीय आरण्यक में वर्णित है कि प्रजापति ने अपने शरीर को धून दिया। उनके मांस ने अरुण केतु वात रसना नख से वैखानस तथा बाल से बालशील उत्पन्न हुए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि युग में नाना प्रकार के ऋषि थे किंतु उनमें सबसे विवादास्पद ऊर्ध्व मंथिन ऊर्ध्व रेतस ऋषियों के हैं जिन्हें भंडारकर व राम प्रसाद चंद्र ने स्वीकार करते हुए संन्यास को सिंधु घाटी के पशुपति मुहर से अभिप्रेरित स्वीकार किया, किंतु इन मुनियों को इंद्र का सखा कहा गया है जबकि उनकी ऊर्ध्व मंथिन ऊर्ध्व रेतस व ऊर्ध्व मेघ क्रिया उन्हें आर्यवृत्त के बाहर एवं अनार्य कृष्ण देवा के निकट ला देती है। यदि इन मुनियों को हम आर्य परंपरा का स्वीकार भी कर ले तो भी इन्हें संन्यास आश्रम का स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, आश्रमों का प्रचंड प्रसंग। चारों आश्रमों का प्रथम प्रचंड प्रसंग ऐतरेय ब्राह्मण में आया है। वर्णन है कि अजीन से क्या, मल से क्या, अश्मश्रु से क्या, तप से क्या है। ब्राह्मण पुत्र की कामना कर यह वह लोक है जिसकी प्रशंसा की गई है। की नु मलम की माजिनम की मुश्चुड़ी की पतन की तपन्ने पुत्रम ब्राह्मण इच्छा ध्वम सवे लोको पदावद। प्रसंग का आजीन निगचर्म ब्राह्मण के ब्रह्मचर के लिए अश्मश्रुड़ी वानप्रस्थ मल गृहस्थ एवं तप संन्यास का परिचायक है। दूसरा प्रचंड प्रसंग छंदोग्य का है जिसमें मानव के प्रातः मध्यान्ह एवं साध श्रवण का प्रसंग है। इससे भी अधिक स्पष्ट छंदोग्य का दूसरा प्रसंग है जिसमें धर्म के 3 स्कंध कहे गए हैं। त्रयोही धर्म स्कंध है, यज्ञो ध्यान दान मिति प्रथम तप एवं द्वितीय ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय एवं ब्राह्म संस्था। यज्ञ वादान गृहस्थ तप वानप्रस्थ आचार्य कुलवासी ब्रह्मचर्य का स्पष्ट संकेत देता है, जबकि इन तीनों से व्यक्ति पुण्य लोक प्राप्त करता है। पर जो ब्रह्म संस्था है वे अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। प्रसंग संन्यास का परिचायक हो सकता है। मोदी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि छंदोग्य की रचना के समय तक पृथक आश्रम के रूप में संन्यास का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में वानप्रस्थ से ही संन्यास का विकास हुआ। इस तथ्य की पुष्टि बृहदारण्यक उपनिषद से भी होती है जिसमें वर्णन है कि आत्मविद हे ब्राह्मण पुत्रेषणा मित्रेषणा लोकेषणा का प्रत्याग कर भिक्षु का आचरण करें। इस प्रकार प्रारंभिक उपनिषदों की रचना के समय तक 3 आश्रम विद्यमान थे। अतः राइस डेविडस जैसे विद्वानों ने संन्यास आश्रम को बौद्ध एवं जैन धर्म से प्रभावी स्वीकार किया। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण पुरोहितों ने बौद्ध धर्म के नवीन उपासकों के प्रवाह को संन्यास आश्रम के द्वारा अपनी अनुकूल दिशा में परिवर्तित कर दिया, जबकि इससे विपरीत डेकोई जैसे विद्वानों की धारणा थी कि प्रतिक्रियावादी संप्रदायों कोष्टक में बौद्ध व जैनों के बीच संन्यास आश्रम में विद्यमान थे। मूलर ने भी स्पष्ट किया है कि जैनियों के 5 महाव्रत संन्यास से पूर्ण रूपेण प्रभावित हैं। इस प्रकार संन्यास के उदय की परस्पर विरोधी धारणाएं प्रकाश में आई हैं। नंबर 4, वैदिक उत्तर वैदिक युग में आश्रम। यह एक निर्विवाद सत्य है कि उत्तर वैदिक साहित्य में संन्यास की परिकल्पना पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाई है। अतः प्रश्न है कि इसका उद्गम स्रोत क्या था। सिंधु सभ्यता के प्रकाश में आने के पश्चात वहाँ के महाभोगी एवं उर्ध्वमेघ पशुपति की प्रतिमाओं के आधार पर भंडारकर चंदा इत्यादि ने संन्यास का स्रोत सिंधु को स्वीकार किया, क्योंकि संन्यास का ध्यान चिंतन योग विधि सिंधु सभ्यता की देन कही जा सकती है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अथर्ववेद के वार्त्य संहिता का है जिसमें महादेव ईशान एवं शिव की तपस्या का उल्लेख है। इस एक वार्त्य ईशान को सप्त प्राण सप्त आपान का सप्त ज्ञान का ज्ञाता कहा गया है। संभव है कि योग व संन्यास से संबंधित पशुपति शिव के माध्यम से आर्य परंपरा में प्रवेश पा सका। अंत में हम कह सकते हैं कि चारों आश्रमों का स्पष्ट विकास श्वेताश्वर उपनिषद की रचना के समय संपन्न हुआ, क्योंकि इस उपनिषद में अत्याश्रमी शब्द है, किंतु अस्पष्टया प्रथम बार जाबाल उपनिषद में आश्रमों का क्रमबद्ध वर्णन है। याज्ञवल्प ने कहा है कि ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गृहस्थ से वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ से प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार परवर्ती उपनिषदों की रचना के समय आश्रम व्यवस्था विकसित हो चुकी। नंबर 5, धर्म सूत्रों में आश्रम। अति प्राचीन धर्म सूत्रों में भी आश्रमों की संख्या 4 कही गई है, यद्यपि उनके क्रम एवं नाम में अंतर है। उदाहरण स्वरूप अपस्तम धर्म सूत्र में आश्रम 4 कहे गए हैं। गृहस्थ आचार्य कुल मौन एवं वानप्रस्थ इनमें से आचार्य कुल ब्रह्मचर्य एवं मौन संन्यास का परिचायक है। चत्वारी आश्रमा गृहस्थाचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम इति। गौतम भी ब्रह्मचारी गृहस्थ भिक्षु व वैखानस का उल्लेख करते हैं, जबकि वशिष्ठ धर्म सूत्र में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ एवं परिवारजक का उल्लेख है। इस संदर्भ में बोधायन धर्म सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है कि प्रहलाद के पुत्र कपिल ने देवताओं की शत्रुता के कारण सन्यास आश्रम का विकास किया। इससे इतना अनुमान किया जा सकता है कि सन्यास संभवतः आर्य विरोधी संस्था रही होगी, जिसका कालांतर में आर्यीकरण कर दिया गया। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में पाराशर रचित भिक्षु सूत्रों का उल्लेख किया है, साथ ही उसने परिवारजक व मस्करी शब्दों का उल्लेख किया है। अतः स्पष्ट है कि पाणिनि से पहले संन्यास आश्रम का विकास हो चुका था। धर्म सूत्रों व स्मृतियों के युग में आश्रम संस्थाएं न केवल रूढ़ हो चुकी थी, वरन धर्म शास्त्रियों ने इसके दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक आधार भी ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने मानव जीवन के देश कालश्रम गुण के संदर्भ में आश्रम व्यवस्था का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। श्रम के आधार पर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों का विकास हुआ, तो गुण के आधार पर चार वर्णों का विकास हुआ। काल मानव जीवन का निर्धारक तत्व बना, कहीं कहीं उसे युग धर्म से भी संबंधित किया गया, तो देश आर्यावर्त जैसे क्षेत्र का विशेष परिचायक हुआ। तात्पर्य कि इन धर्म शास्त्रियों ने आर्यावर्त वासियों के चार वर्णों के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की। भीष्म ने देश व काल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश व काल के प्रभाव से धर्म अधर्म व अधर्म धर्म हो जाया करते हैं। तात्पर्य कि ये सभी धर्म परिवर्तनशील हैं। इस परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए आश्रम व्यवस्था के परिपालन के प्रविधान किए गए हैं। नंबर 6, आश्रमों का चयन। चारों आश्रमों के परिपालन के लिए धर्म शास्त्र में आश्रम समुच्चय, आश्रम विकल्प, आश्रम बाध की व्यवस्था है। मनु एवं दक्ष प्रभृति धर्म शास्त्रियों ने आश्रम का समुच्चय का सुझाव दिया। उनकी मान्यता है कि चारों आश्रमों को क्रम से पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास। याज्ञवल्क ने भी जाबाल उपनिषद में इसी क्रम की पुष्टि की है। आश्रम समुच्चय में विवाह एवं काम संवर्धन संन्यास में बाधक नहीं माने गए, वरन इन तप एवं संन्यास भी श्रेष्ठ कहा गया है। अधिकांश धर्म शास्त्रियों ने मनु का समर्थन किया है एवं वानप्रस्थ एवं संन्यास को स्पष्ट शब्दों में कलिवर्ज कहा है। आश्रम विकल्प के व्यक्ति के सामने यह विकल्प रहता है कि वह ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश करे या संन्यास आश्रम ग्रहण करे। इस व्यवस्था का वशिष्ठ विष्णु, याज्ञवल्क्य एवं अपस्तम्भ ने समर्थन किया है। आश्रम बाद का समर्थन गौतम व बोधायन जैसे प्राचीन धर्म शास्त्रियों ने किया। इनका कहना है कि वस्तुतः एक ही आश्रम है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य इसके पूरक का कार्य करता है, शेष दो आश्रम इसके घटकर है। एक आश्रम त्वाचार्य प्रत्यक्षम विधानात्रा बौधायन गौतम मनु दक्ष इत्यादि प्रमुख धर्म शास्त्रियों ने गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया है। वे ऋग्वेद एवं तैतरीय संहिता के उस श्रुति वचन को प्रमाण मानते हैं, जिसमें पुत्र द्वारा अमृत तत्व की बात कही गई है। जो आश्रम बाद के समर्थक हैं, वे शतपथ ब्राह्मण के उस श्रुति वचन के समर्थक थे, जिनमें कहा गया है कि जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए या शतवर्ष एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य के एक वचन पर भाष्य करते हुए मिताक्षा में कहा गया है कि आश्रम समुच्चय विकल्प एवं बाध सभी के समर्थन में कोई न कोई श्रुति वचन उद्धृत किया जा सकता है। अतः व्यक्ति चाहे जिस किसी भी पद्धति का अनुसरण कर सकता है। निष्कर्ष अंत में इस विवाद का जैसे समापन करते हुए अपस्तम्भ धर्म सूत्र में कहा गया कि सभी आश्रम श्रेष्ठ हैं, उनमें कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं, उनमें किसी भी आश्रम का शास्त्र विधि से संवर्धन सुखकर होता है। न तु तज्येष्ठायामाश्रमाणाम येषु सर्वेषु यशोपदेश मध्य यो वर्तमान क्षेमंग गच्छति। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक एवं जीव शास्त्रीय आधार। किसी जाति के सामाजिक संगठन के मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक एवं जीव वैज्ञानिक आधार का अध्ययन करते समय उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण जानना आवश्यक हो जाता है। जीवन उद्देश्य से ज्ञात हो जाने पर आदर्श एवं सिद्धांतों का आकलन आसान हो जाता है, जो समाज में व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि सभी सामाजिक संस्थाएं जीवन की समस्याओं एवं उद्देश्यों के समाधान संप्राप्ति के लिए गठित की जाती हैं। अतः आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक एवं जीव वैज्ञानिक आदर्शों को समझने के पहले हमें हिंदू जीवन के आदर्श एवं उद्देश्य को समझना आवश्यक हो जाता है। नंबर एक हिंदू जीवन आदर्श एवं उद्देश्य। सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं का उदय मानव आवश्यकताओं से होता है। मानव आवश्यकताएं मानव रुचि उद्देश्य एवं आकांक्षाओं को निर्धारित करती है। अतः सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति एवं समाज के मध्य मानव व्यवहार के समायोजन पर निर्भर करती है। हिंदू जीवन इसी सामाजिक एवं व्यक्ति परिवेश में देखे गए हैं। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार वर्तमान जीवन का कोई महत्व नहीं है, इनका महत्व भूत एवं भविष्य जीवन के संदर्भ में है निर्धारित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह जीवन भूत एवं भविष्य की जीवन मरण की एक श्रृंखला मात्र है। पूर्व भव वर्तमान भव की और वर्तमान भव भविष्य भव को निर्धारित करता है। इस जीवन मरण की श्रृंखला से मुक्ति ही हिंदू जीवन का परम उद्देश्य है। हिंदू धर्मशास्त्र यह मानकर चलता है कि मानव योनि ही मोक्ष प्राप्त करने का सु अवसर है। इस योनि में व्यक्ति मुक्त जनों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र या धर्म के अनुरूप जीवन व्यतीत कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू जीवन दर्शन में आत्मा अमर एवं शरीर नश्वर कहा गया है। यह आदर्श श्रुति स्मृति पुराण महाकाव्य प्रभृति हिंदू साहित्य में देखा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल से ही अमृत तत्व प्राप्त करने की दृष्टा ऋषियों की आकांक्षा रही है। ऋग्वेद में अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अग्नि से प्रार्थना की गई। अथर्ववेद में आत्मा में परिवर्तन की बात स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो तप करता है उसे स्वर्ग में मैथुन समेत सभी शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। इस आत्मा की अमरता से कर्म सिद्धांत संबंध है। उपनिषदों में कर्म एवं कर्म फल की व्यापक व्याख्या है। कौशिकी उपनिषद में कहा गया है कि आयात्मा यथा कर्म या यथा विद्या के अनुरूप कीट पतंग पशु पक्षी नाग मृग नर या सिंह किसी भी जीव का शरीर ग्रहण करता है। यहाँ तक कि यथा कर्म या यथा श्रुति के अनुसार वृक्ष या वनस्पति भी हो सकता है। महाभारत में कहा गया है कि कर्म का नाश नहीं होता, नास्ति हि कृतस्य नाशः, किंचित कर्म ही कर्म फल देता है। मनु ने आगे स्पष्ट किया है कि कर्म शुभ या अशुभ होते हैं जिनका फल प्राप्त करना अनिवार्य है। पूर्व जन्म के कर्म ही वर्तमान भव के कारण होते हैं। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है, अतः इस कर्म श्रृंखला का अंत ही कर्म निवृत्ति मोक्ष हो सकता है। किंतु महाभारत में कर्म प्रवृत्ति को भी मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है। भीष्म के अनुसार विभिन्न आश्रम धर्म के परिपालन के द्वारा एवं उनमें स्वधर्म का निर्वाह करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि धर्म व्याघ ने भी कहा है कि धर्म अधर्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि धर्म अधर्म के बारे में बहुत कुछ निश्चित है। स्वधर्म निरत व्यक्ति यश को प्राप्त करता है। मनु के अनुसार धर्म ही परम पद की प्राप्ति में सहायक होगा। माता पिता पुत्र पत्नी बंधु बांधव कोई भी सहायता के लिए नहीं आता, उसके साथ केवल धर्म ही रहता है। धर्म धर्मस्तिष्ठति केवलम, अतः धर्म निरत व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म संचय ही मोक्ष का साधन है। आश्रम व्यवस्था वर्ण धर्म सम्मान एवं सामान्य धर्म इत्यादि इसके पद मात्र हैं। जीवन का उद्देश्य मरना नहीं वरन अमर होना है और इस अमरता की संप्राप्ति आश्रम धर्म के माध्यम से संभव है। नंबर दो मनोवैज्ञानिक व जीव शास्त्रीय आधार। आश्रम एवं वर्ण व्यवस्था उपरोक्त जीवन दर्शन के संदर्भ में गठित है। हिंदू धर्म शास्त्रियों ने मानव जीवन को देश काल श्रम एवं गुण के संदर्भ में देखा है, जिनमें देश व काल क्रमशः आधार व सूत्राधार का कार्य करते हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा है कि इनके प्रभाव से धर्म अधर्म एवं अधर्म धर्म बन जाता है। श्रम व्यक्ति के पुरुषार्थ है जिसे वह समसामयिक वातावरण के संदर्भ में व्यक्त करता है, जबकि गुण उसके अनुवांशिकता से प्राप्त व्यक्ति विशेष है जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक तत्व कह सकते हैं। वर्ण आश्रम व्यवस्था हिंदू सामाजिक संगठन की रीढ़ है। आश्रम व्यवस्था विश्व सामाजिक इतिहास में हिंदुओं की अभूतपूर्व देन है। प्लेटो के रिपब्लिक में आश्रम से मिलते जुलते तथ्य अवश्य है, पर वैज्ञानिक पूर्णता नहीं है जो हिंदू आश्रम व्यवस्था में है। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक नियुक्ति के मनोवैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक आधार हिंदू धर्म शास्त्रियों के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म शास्त्रियों ने पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज की परस्पर संबंध समायोजन एवं परिस्थिति जन्य परिवर्तन की व्याख्या की है। पुरुषार्थ चार है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। इन्हें मनोवैज्ञानिक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक आधार इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति आश्रमों में धर्म एवं काम प्रवृत्ति नैतिक जीव शास्त्री व मनोवैज्ञानिक विषयों का आश्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करता था। दूसरे वास्तविक व्यवहार में समाज से इन्हीं तत्वों के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में उसका व्यवहार होता है। आश्रमों के संदर्भ में पुरुषार्थ का अर्थ एवं प्रयोग इनके महत्व को स्पष्ट करेगा। नंबर 3, पुरुषार्थ का अर्थ एवं प्रयोग। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष अति प्राचीन काल से ज्ञात है। ग्रीक धातु से उत्पन्न धर्म की व्याख्याएं अनेक है, जिनमें सर्वमान्य व्याख्या महाभारत की है। धारणा धर्मम इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा, अतः धारण करने के कारण धर्म कहा गया है। धर्म प्रजा का संरक्षक होता है, अतः प्राचीन धर्म शास्त्रियों की मान्यता थी कि धर्म वह तथ्य है जिसके संपूर्ण विश्व की रक्षा हो सकती है। अर्थ सांसारिक समृद्धि धन संपदा प्राप्त करने का साधन है, तो काम अंतर्वृत्तियों को गति प्रदान करने वाला तत्व है। सामान्यतः भारतीय नैतिक एवं धार्मिक ग्रंथों में कामंड रूपियों कोष्टक में काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सर में रखा गया है। उसी आधार पर धर्मशास्त्रियों ने इसे सबसे हीन पुरुषार्थ कहा, किंतु वासायन ने अपने काम सूत्र में एवं अन्य धर्मशास्त्रियों ने भी काम को प्रेरक तत्व स्वीकार किया एवं मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। शेष तीनों धर्म अर्थ एवं काम इसकी प्राप्ति के साधन है। पुरुषार्थ के परस्पर महत्व एवं संबंध की चर्चा करते हुए कहा गया है कि अर्थ एवं काम सांसारिक पुरुषार्थ हैं, जबकि धर्म इनसे ऊंचा है। वस्तुतः धर्म मनोवैज्ञानिक व नैतिक प्रेरक है, जबकि काम जीव वैज्ञानिक भूभुच्छा की शांति का साधन है। अर्थ दोनों के लिए साधन प्रस्तुत करता है। सामान्य मान्यता है कि धन के बिना धर्म संभव नहीं है एवं काम के बिना संतान संभव नहीं है, अतः इनकी हीन स्थिति को स्वीकार करते हुए भी इनके उचित गुण एवं परिमाण का देश एवं काल के संदर्भ में ऋषियों के निर्देश द्वारा समायोजन करने का सुझाव दिया गया है। तात्पर्य है कि धर्म के निर्देश में व्यक्ति अर्थ एवं काम जनित श्रेष्ठ जीवन का निर्वाह भी कर सकता है। जैसा कि महाभारत में विदुर ने कहा है कि धर्म से ही ऋषि संसार सागर से पार करते हैं। विश्व की प्रतिष्ठा व स्थिति धर्म पर ही निर्भर है। अर्थ एवं काम भी अपने उचित समायोजन के लिए धर्म पर ही निर्भर है। अतः धर्म श्रेष्ठ है, अर्थ माध्यम है और काम हीन है। अतः हमें धर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महाभारत में आगे कहा गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की इन तीनों को ही प्राप्त करने की इच्छा होती है, किंतु तीनों संभव ना हो सके तो केवल धर्म एवं अर्थ प्राप्त करना चाहिए। यदि दो भी संभव नहीं है तो केवल धर्म की कामना करता है। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति तीनों में से अर्थ की कामना करता है, क्योंकि इसे धर्म एवं काम व्याप्त किए जा सकते हैं। यह मूर्ख जन काम की भावना करते हैं। इस संदर्भ में सबसे उचित सुझाव मनु का है। मनु का कहना है कि त्रिवर्ग समुच्चय में ही लोक कल्याण निहित है। वे कहते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार धर्म एवं अर्थ श्रेष्ठ है तो दूसरे के अनुसार काम एवं अर्थ, कुछ अकेले धर्म का गुणगान करते हैं तो अन्य केवल अर्थ को लोक कल्याण का साधन मानते हैं। पर वास्तविक स्थिति यह है कि तीनों के परस्पर सामंजस्य में ही लोक कल्याण निहित है। मनु के इस कथन पर भाष्य करते हुए कुल्लूक ने सुझाव दिया है कि सांसारिक एवं वर्तमान जीवन के संदर्भ में तो त्रिवर्ग समुच्चय श्रेष्ठ है, किंतु जीवन के अंतिम उद्देश्य के संदर्भ में मोक्ष ही श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म शास्त्री ने आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति एवं समाज के परस्पर संबंधों के निर्वाह का निर्देश दिया है। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचर्य में व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में धर्म अर्थ एवं मोक्ष का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है, काम की सैद्धांतिक शिक्षा के प्रमाण नहीं मिलते। गृहस्थ आश्रम में वह अर्थ एवं काम पर धर्मतः आचरण करता है। यहाँ उसे अन्य व्यक्ति से एवं संपूर्ण समष्टि से संबद्ध करना होता है। इसी प्रकार धर्म भी व्यक्ति एवं समाज से अलग नहीं रह सकता, जैसा कि वानप्रस्थ आश्रम में होता है। केवल संन्यास आश्रम में व्यक्ति का समाज से पूर्ण संबंध टूट जाता है। अर्थ धर्म एवं काम मोक्ष की दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से पुरुषार्थ व्यक्ति एवं समाज के उचित संबंध में सहायक होते हैं। धर्म नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक मानदंड निर्धारित करता है, तो काम जीव वैज्ञानिक अर्थ दोनों को भौतिक आधार प्रस्तुत करता है। नंबर 4, आश्रम आचार। उपयुक्त विवरण आश्रम व्यवस्था के सैद्धांतिक आदर्श एवं आधार प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस आदर्श पर आचरण भी संभव था। महाभारत में व्यास ने आश्रम के आचरणों पर विशेष ध्यान दिया। इनके अनुसार चारों आश्रम ब्रह्मा लोक के लिए चतुष्पद के समान है। जिस पर चढ़कर हम ब्रह्मा लोक पहुंच सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के तीन वर्ग बन गए जो चारों आश्रमों के क्रम से आचरण का सुझाव देते हैं। उन्हें अंतिम समुच्चयवादी कहा जाता है जो आश्रमों के चयन की बात करते हैं। वे विकल्प नहीं हैं और जो केवल गृहस्थ का समर्थन करते हैं वे आश्रमवाद के समर्थक हैं। समानतः मनु का आश्रम समुच्चय अधिकांश धर्मशास्त्रियों को मान्य है। इस व्यवस्था के अनुसार एक आश्रम से दूसरे आश्रम को क्रमशः समाप्त करते हुए जितेंद्रीय एवं शास्त्र सम्मत विधि से धर्माचरण करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धर्मशास्त्रियों ने पुरुषार्थों की सैद्धांतिक पक्ष को आधार एवं व्यवहार देने के लिए तीन ऋणों की कल्पना की है। ये है ऋषि ऋण, पति ऋण एवं देव ऋण। ब्रह्मचर्य आश्रम में विधवत वेदा अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण, गृहस्थ आश्रम में धर्मतः पुत्र उत्पन्न करके पिति ऋण एवं वानप्रस्थ आश्रम में शांतितः यज्ञ करके देव ऋण से मुक्ति पाने का विधान है। इनके मुक्ति के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष की कल्पना कर सकता है। धर्म शास्त्रियों का उपरोक्त आधार भी मनोवैज्ञानिक व जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण स्वरूप धर्मशास्त्री गृहस्थ के लिए धर्मतः अर्थ एवं काम समर्थन का सुझाव देता है, शांतितः नहीं, क्योंकि धर्म के निर्देश में युवा गृहस्थ को अर्थ एवं धर्म को प्रशस्त पथ से विरत होने की संभावना छिड़ रहती है। जबकि वानप्रस्थी के जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है जिसकी इंद्रिया शिथिल होने लगती है, उसे बलपूर्वक धर्म समर्थन का निर्देश देकर धर्म शास्त्र ने उचित ही किया है, क्योंकि इससे व्यक्ति एवं समाज की कोई क्षति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति का निर्माण काल होता है, सीखने का समय होता है, अतः इस समय शिक्षा की व्यवस्था है। यौन प्राप्त होने पर व्यक्ति में काम वृत्तियाँ जागृत होती है, अतः विवाह कर उसे गृहस्थ होने का सुझाव है। जब उसके धर्म झुर्रियाँ आने लगती है धर्म में झुर्रियाँ आने लगती है केश जन जैसे सफेद हो जाते हैं, उनके नाती पोती खेलने लगते हैं, तब वह वानप्रस्थ ग्रहण करता है, चाहे वह पत्नी को भी साथ रख सकता है। अंत में संपूर्ण विश्व का त्याग कर वह सन्यासी हो जाता है। निष्कर्ष: आश्रम व्यवस्था के आचार एवं व्यवहार के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में धर्म की प्रधानता है, गृहस्थ में काम एवं अर्थ की, किंतु चूंकि उसे धर्म ज्ञान है इसलिए वह धर्म के माध्यम से अर्थ एवं काम का समर्थन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में समाज व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है, जबकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज के लिए। द्वितीय आश्रम पुनः तटस्थ है एवं चतुर्थ आश्रम आत्मवादी हो जाता है, समाज का संपर्क यही समाप्त हो जाता है। हिंदू जीवन पद्धति की प्रमुख विशेषता भूमिका: हिंदू जीवन दर्शन ने आध्यात्मिकता, भोग त्याग तथा वैयक्तिक और सामाजिक विकास के बीच संतुलन के लिए हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। आश्रम व्यवस्था भी उनमें से एक है। चारों पुरुषार्थों की क्रमबद्ध विधिवत व सुनियोजित पूर्ति के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान अर्जन के माध्यम से धर्मचारण की दीक्षा लेने, गृहस्थ आश्रम में भोग करने, वानप्रस्थ में भोग में निर्लिप्त रहने तथा संन्यास में पूर्ण वैराग लेने की व्यवस्था की गई है। इनमें से किसी भी आश्रम की उपेक्षा करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। वह पूरी व्यवस्था एक सुविचारित व्यवहारिक योजना के रूप में है। आश्रम का अर्थ एवं परिभाषा: संस्कृति के श्रम धातु से आश्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रम का अर्थ है प्रयास अथवा परिश्रम करना। पीएन प्रभु ने आश्रम शब्द के दो अर्थ बताए हैं। नंबर एक, एक स्थान जहां प्रयत्न का उद्योग किया जाता है। नंबर दो, इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग की क्रिया। जर्मन विद्वान पाल डायसान ने भी इसी प्रकार की परिभाषा की है। उनके अनुसार आश्रम शब्द के दो अर्थ हैं, वह स्थान जहां श्रम किया जाए। नंबर दो, स्वप्रयत्न करना साहित्यिक दृष्टि उनका अर्थ विराम स्थल पड़ाव है। यह जीवन यात्रा के विराम स्थलों की ओर संकेत करता है। व्यास जी ने महाभारत में इसे विश्राम स्थल अथवा चार सरणियों वाली सीढ़ी की संज्ञा प्रदान की है जो ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर आश्रम के मुख्यतः तीन अर्थ हैं। नंबर एक, रत्न अथवा उद्योग करने के स्थल। नंबर दो, मोक्ष के लिए किए जाने वाली यात्रा के बीच विश्राम स्थल। नंबर तीन, मनुष्य के जीवन काल में विभाग अथवा स्तर। हिंदू जीवन दर्शन का यह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विश्लेषण है। प्रत्येक पुरुषार्थ एक प्रवृत्ति विशेष तथा प्रत्येक प्रवृत्ति एक अवधि विशेष से जुड़ी हुई है। बाल्यकाल में 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था कही गई है। इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञानार्जन तथा धर्माचरण की दीक्षा प्राप्त करना मनुष्य की रुचि मनोवृत्ति तथा क्षमता के अनुकूल है। ज्ञानार्जन और धर्माचरण की दीक्षा के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। गृहस्थ आश्रम के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है वह गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास के लिए भी जो अवधि निर्धारित की गई है उसमें व्यक्ति का झुकाव विरक्ति की तरफ हो जाता है। युवा अवस्था में वानप्रस्थ और संन्यास लेने की बात करना अमनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक होगा। पुरुषार्थ के पालन के लिए जीवन को चार स्तरों में बांटना भी मनोवैज्ञानिक है। मानव जीवन के अखंड रूप की कल्पना करना अवैज्ञानिक है, क्योंकि वह अनेक कर्तव्यों के बीच विभक्त है जिनका पालन आवश्यक है। उनमें से किसी भी की उपेक्षा करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करके ही वह अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को तैयार कर सकता है। आश्रमों का विभाजन। अपस्तंभ धर्मसूत्र ने मानव जीवन को चार आश्रमों में बांटा है। गृह गेह में रहना, गृहस्थ मुनि के रूप में रहना, वन में रहना। विशिष्ट धर्मसूत्र के अनुसार भी चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और परिवारजन। छंदों के उपनिषद में केवल तीन आश्रम बताए हैं, विद्या अर्जित करने का स्तर, गृहस्थ स्तर पर और संन्यास स्तर। सामान्यतः हिंदू धर्म शास्त्रों ने मनुष्य की अवस्था 100 वर्ष मानकर संपूर्ण जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। यद्यपि सामान्यतः चार आश्रमों को स्वीकार कर लिया गया है, तथापि आश्रमों के विभाजन के संबंध में कुछ विद्वानों के विभिन्न मत है। पीएन प्रभु के अनुसार प्रारंभ में केवल 3 आश्रम थे, वे वानप्रस्थ और संन्यास को मिलाकर एक आश्रम माना जाता था, क्योंकि संन्यास के लिए तैयारी की जाती थी। त्याग और तपस्या का जीवन वानप्रस्थ में बिताया जाता है, यही सन्यासी का जीवन होता है। प्रारंभ में मान 3 आश्रमों की व्यवस्था 4 आश्रमों की व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। निर्धारित आयु। सामान्यतः हिंदू धर्म शास्त्रों ने जीवन यात्रा को 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का समय निर्धारित किया है। ऋग्वेद काल से ही जीवेम शरदः शतम की कामना की जा रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 25-25 वर्ष की यह अवधि केवल सैद्धांतिक सीमा है, व्यवहार में व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर यह घटाई बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य का न्यूनतम अंश, जिसे सभी के लिए पूरा करना अनिवार्य है, पूरा नहीं कर पाता तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की योग्यता नहीं रखता है, तो उसे जबरदस्ती उसमें नहीं ढकेला जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसकी आयु बढ़ाई जा सकती है। वात्स्यायन ने आयु का इस प्रकार विभाजन स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने अपने काम सूत्र में जीवन को बाल्यावस्था, यौवनावस्था और अस्थिवर या वृद्धावस्था में बांटा है। उनके अनुसार बाल्यावस्था विद्यावर्जन, यौवनावस्था भोग एवं काम, वृद्धावस्था धर्म और मोक्ष प्राप्ति के निमित्त प्रयास करने के लिए बनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न आश्रमों के लिए आयु की सीमा के निर्धारण के संबंध में 2-4 मतभेदों के बावजूद समानतः प्रत्येक के लिए 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, तथा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस आश्रम में कौन सा कर्तव्य करना पड़ेगा। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य के कर्तव्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्मा का अर्थ है महान तथा चर्य का अर्थ है विचरण। इस प्रकार इसका अर्थ है ऐसे मार्ग पर चलना जिससे व्यक्ति महान बन सके। वह महान तभी बन सकता है जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विकास हो। वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंद्रिय निग्रह, अनुशासित जीवन, पवित्रता, त्याग और सादगी के जरिए व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए इन दृष्टियों से व्यक्ति का विकास आवश्यक है। इसलिए धर्म शास्त्रों ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रविधान किया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह आश्रम उपनयन संस्कार अथवा जनेऊ धारण करने के पश्चात शुरू होना चाहिए, क्योंकि जन्मना सभी लोग शूद्र होते हैं। इस संस्कार के बाद ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज होते हैं। द्वितीयत्व ग्रहण करने के पश्चात ही व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। ब्राह्मण के लिए 8 से 10, क्षत्रिय के लिए 10 से 14 और वैश्य के लिए 12 से 16 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसके लिए सामान्यतः है 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, परंतु शास्त्रकारों ने आवश्यकता अनुसार उसे 28 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अनिवार्य है कि वह गुरुकुल में बिताया जाना चाहिए। प्राचीन काल में जिस समय आश्रम व्यवस्था पालन होता था, गुरुकुल बस्ती से दूर हुआ करते थे। सन्यासी गुरु होते थे तथा वे जंगलों में रहकर विद्यादान करते थे। बस्ती से दूर होने के कारण उनका वातावरण नैतिक होता था, जिसमें विद्यार्थी का ठीक ढंग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास संभव था। ब्रह्मचर्य आश्रम बिताने अर्थात गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति शूद्र को नहीं है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार केवल 3 ही वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लोग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अध्ययन के संबंध में भी तीनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। ब्राह्मण के लिए धर्मशास्त्र, क्षत्रिय के लिए शास्त्र और वैश्य के लिए व्यापार संबंधी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात वेदा अध्ययन प्रारंभ करने पूर्व गुरुकुल में ही शिक्षा संस्कार संपन्न करने का भी प्रावधान है। इस व्यवस्था के अनुसार दीक्षित होने के तत्काल बाद ही कोई छात्र वेदा अध्ययन प्रारंभ करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। प्राचीन काल में जिस समय यह व्यवस्था थी, छात्र को तत्काल वेदा अध्ययन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उसे गुरु की विभिन्न प्रकार की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना पड़ता था। जब गुरु प्रसन्न होते थे तब उन्हें विश्वास हो जाता था कि उसे ज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा है, तब उसे वेदा अध्ययन प्रारंभ करने की अनुमति मिलती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य। ब्रह्मचर्य आश्रम के कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन आवश्यक है। नंबर 1, ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत मेखला, अजीन और दंड नियमक पूर्वक धारण करना चाहिए। नंबर 2, भिक्षा मांग कर उसे आहार करना चाहिए। गुरुकुल और जाति कुल में भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 3, उसे ना तो अधिक और ना कई बार भोजन करना चाहिए। नंबर 4, सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के समय उसे सोना नहीं चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद तक सोता है तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। नंबर 5, मन वचन और कर्म से उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले को दूसरे जन्म गधा होना पड़ेगा। उसे गुरु की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जन्म में कुत्ता होता है। नंबर 6, उसे ना तो गुरु से अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए और ना अच्छा भोजन ही करना चाहिए। गुरु की छाया को कभी लंघन नहीं करना चाहिए तब उसे उनसे सर्वदा नीचे बैठना चाहिए। नंबर 7, दूर दूर से समिधा लाकर प्रातः और सायंकाल उसे यज्ञ और होम करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी 7 दिन तक हवन नहीं करता है वह लुप्त व्रत हो जाता है। नंबर 8, उसे ना तो सुगंधित वस्तुओं और ना जूते छाते जैसी आराम तलब वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि उसे तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नंबर 10, ना तो वह वाद विवाद में पढ़ना चाहिए और ना दूसरे का छिंद्रान्वेषण करना चाहिए। नंबर 11, स्त्रियों की तरफ कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। नंबर 12, काम वासना के अधीन होकर वीर्यपात नहीं होने देना चाहिए। नंबर 13, उसे अपवित्र और अनुचित कार्य तथा बुराइयों से बचना चाहिए। नंबर 14, दूसरों का आदर सत्कार करना तथा सादा जीवन एवं उच्च विचार का आदर्श अपनाना चाहिए। धर्माद से संबंधित साहित्य और वेद का अध्ययन तथा ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मन वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यम कोष्टक में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं, तथा नियम कोष्टक में शौच, संतोष, तप, स्वाय, अध्याय और ईश्वर पूजा 5 नियम हैं का पालन करना चाहिए। नित्य स्नान कर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण तथा पूजन करना। मधु, मांस, रस और आचार का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा अकेले सोना तथा अपने व्रत से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। सदाचार और संयम से युक्त होकर अपना दाहिना हाथ दुपट्टे से बाहर रखना चाहिए। गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यदि करना पड़े तो शिष्टता पूर्वक करना चाहिए। गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए या अपना कान बंद कर लेना चाहिए। नाच गान से दूर रहना चाहिए, गुरु के निकट रहते हुए उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में जितने भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हैं। शारीरिक विकास के लिए ही संयम, वीर की रक्षा करने तथा काम वासना को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहा गया है। मानसिक के लिए वेदाध्ययन, गुरु के प्रति आदर भाव और पवित्र आचरण पर बल दिया गया है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, संतोष और पवित्रता सभी के सभी आध्यात्मिक विकास में सहायक हैं। आश्रम व्यवस्था के अनुसार इन कर्तव्यों का पालन करते हुए विद्यार्थी को ज्ञानार्जन करना चाहिए। पठन पाठन की समाप्ति पर उसे प्रतीक रूप में स्नान कराया जाएगा, इसके बाद वह स्नातक कहलाने लगेगा। स्नातक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने स्नान कर लिया हो। विद्या अध्ययन की समाप्ति के बाद गुरु से विदा लेकर अपने घर लौट आएगा, उसे समावर्तन की संज्ञा दी गई है। इसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के योग्य और उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। समावर्तन संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। शास्त्रकारों के अनुसार यह सभी आश्रमों में महत्वपूर्ण तथा सभी का आधार है। इसमें अर्थ और काम दोनों की धर्मानुसार पूर्ति होती है तथा यह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। मनु के अनुसार जिस प्रकार जीव जंतु वायु के सहारे जीते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हैं। जिस प्रकार नदी नद समुद्र में जाकर विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम में स्थिति प्राप्त करते हैं। व्यास स्मृति के अनुसार जितेंद्री होकर गृहस्थ धर्म के पालन करने वाले को घर में कुरुक्षेत्र में नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार्थ तीर्थ मिल जाते हैं। इसकी उपेक्षा कर सन्यासी बनने वालों की खूब निंदा की गई है। इसका गुणगान इसलिए किया गया है कि इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उऋण होने की व्यवस्था है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का आश्रम है। ब्रह्मचर्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने के बाद व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तथा अनुकूल स्त्री से विवाह कर सांसारिक सुखों का यथाशक्ति उपभोग करता है। वह अपनी काम वासना की तृप्ति तथा अनेक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। इस प्रकार इसे उपभोग और धार्मिक अनुष्ठानों का आश्रम कहा जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश करना तथा 50 वर्ष की आयु की उम्र तक सांसारिक सुखों का उपभोग और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह आयु इसलिए निर्धारित की गई है कि इसमें व्यक्ति को सामान्यतः विद्या अध्ययन समाप्त कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो यह उम्र पूरी हो जाने के बाद ही वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं। गृहस्थ आश्रम जीवन। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति निम्नलिखित कार्य पूरा करता है। नंबर 1, वह सबसे पहले अनुकूल स्त्री से विवाह करता है, क्योंकि मानसिक संतुलन के लिए काम वासना की धर्मानुसार पूर्ति आवश्यक है। इससे समाज की निरंतरता बनाए रखने तथा पिति ऋण से उड़ होने के लिए संतानों उत्पत्ति होती है। नंबर 2, परिवार के संचालन और सामान्य कल्याण के लिए धर्मानुसार अर्थोपार्जन तथा व्यक्तियों और देवताओं के प्रति कर्तव्यों के निर्वाह के लिए धन संचय करता है। नंबर 3, वह पंच महायज्ञ, हवीर यज्ञ और सोम यज्ञ का निर्वाह करता है। जिन पंच महायज्ञों का वह निर्वाह करता है वे इस प्रकार हैं: ब्रह्मा यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, देव यज्ञ, भू यज्ञ और नी यज्ञ। ये इहलोक और परलोक से संबंधित नैतिक कर्तव्य हैं जिन्हें मनु ने यह यज्ञ की संज्ञा प्रदान की है। नंबर का ब्रह्मा यज्ञ। महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने वाले ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस यज्ञ का निर्वाह किया जाता है। वेदा अध्ययन तो वेद मंत्रों के उच्चारण, वेदों को मौखिक रूप से याद रखकर पठन पाठन तथा यज्ञ द्वारा यह पूरा किया जाता है। नंबर का प्रति यज्ञ। प्रति ऋण से उऋण होने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। इसमें श्राद्ध के अवसर पर पितरों को तर्पण और पिंड दान किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह प्रति ऋण से उऋण हो। नंबर का देव यज्ञ। हिंदू जीव दर्शन का ऐसा विश्वास है कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह देवताओं की कृपा से, अतः वह उनके प्रति ऋणी है। उस ऋण से उऋण होने के लिए उसे देव यज्ञ करना चाहिए। उसके पास जो कुछ है उसमें जो इस उसमें कुछ की अग्नि में आहुति देनी चाहिए या किसी वस्तु की बलि चढ़ानी चाहिए। आहुति या बलि देना देव यज्ञ है। इसे पत्नी के साथ पूरा करना चाहिए। इसके द्वारा देव ऋणों से उड़ीर होने के साथ साथ जन कल्याण भी होता है। नंबर का भूत यज्ञ गृहस्थी के कल्याण तथा प्रेत आत्माओं के प्रकोप से बचाने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। इसके अंतर्गत भटकती हुई प्रेत आत्माओं की दृष्टि के लिए बलि या सामग्रियों की आहुति दी जाती है। यह अग्नि में नहीं दी जाती है बल्कि पानी छिड़ककर साफ की हुई जमीन पर रख दी जाती है। यह भी सामान्य कल्याण से संबंधित है। इसमें दी हुई सामग्री कुत्ते, शूद्र, चंडाल, अपाहिजों, कौओं तथा कीट पतंगों को खाने के लिए दी जाती है। डॉक्टर कपाड़िया का कहना है कि समस्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवधारी प्राणियों के प्रति हिंदू आचार शास्त्र का यह दृष्टिकोण इस बात का उत्तम उदाहरण है कि मानवता का क्षेत्र वास्तव में अत्यधिक विस्तृत है। नंबर अंगानी यज्ञ यह अतिथि सेवा से संबंधित यज्ञ है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अतिथि सत्कार एक सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कृत्य है। व्यक्तियों का आदर सत्कार प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम संबंधी कर्तव्य। नंबर एक, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अपने पर निर्भर रहने वालों का भरण पोषण करना चाहिए। उसे माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरण में आए हुए असहाय व्यक्ति तथा अतिथि का भरण पोषण करना चाहिए। इसे पूरा न करने पर वह नरक का भागी होता है। उसे पठन पाठन, जप और यज्ञ आदि से ऋषियों, यज्ञ एवं होम से देवों तथा भोजन और वस्त्र से माता पिता, वृद्धजनों, अतिथियों और सेवकों को प्रसन्न रखना चाहिए। नंबर तीन, उसे पंच महायज्ञों का विधि पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। नंबर चार, भौतिक सुखों तथा पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उसे उचित और पवित्र साधनों से धन कमाना चाहिए। नंबर पाँच, धन का उपभोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी करना चाहिए। नंबर छह, उसे लोभ, मोह, मद, जीव हत्या, असंयम, पक्षपात, भय, अकर्मण्यता, चटुकारिता तथा क्रोध से दूर रहकर संयमित जीवन बिताना चाहिए। नंबर सात, दान देना चाहिए। जीव मात्र पर दया भाव तथा संन्यासियों के प्रति श्रद्धा और ब्रह्मचारियों के प्रति स्नेह का भाव रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम जीवन का महत्व। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है क्योंकि इसमें व्यक्ति अर्थ, काम और धर्म जैसे पुरुषार्थों की पूर्ति करता हुआ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। वह पंच महायज्ञ को पूरा तथा समस्त प्राणियों के कल्याण से संबंधित कार्यों को पूरा करता है। यह अन्य आश्रमों का आधार है। इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। इसमें सामाजिक मूल्यों की रक्षा होती है। अन्य आश्रम व्यक्तिगत जीवन से तथा सामूहिक जीवन से संबंधित होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर अस्थायी प्रसन्नता और स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है उसके लिए गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को परिश्रम और लगन से पूरा करना अनिवार्य है। यह एक कर्म भूमि है जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। यह आश्रम भोग और विलास का काल ना होकर साधना, तप और कर्म का महान स्थल है। यह एक साधन है, साध नहीं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने को अगले आश्रमों के लिए तैयार करता है। यही एकमात्र वह सोपान है जहां सभी यज्ञों की पूर्ति कर व्यक्ति मोक्ष का वास्तविक अधिकारी बन सकता है। महाभारत के शांतिपुर में कहा गया है कि इंद्र के विचार से गृहस्थ का जीवन स्वयं अत्यधिक श्रेष्ठ और पवित्र है तथा इसी द्वारा जीवन के उद्देश्यों की वास्तविक पूर्ति संभव है। यह अनेक सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों से संबंध है। व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और धार्मिक दृष्टियों से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति तीन ऋणों से उड़ होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इन ऋणों को चुकाए बिना जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा वह नरक का गामी होगा। नंबर तीन, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के कर्तव्य एवं महत्व। गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित अर्थात 50 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों ने सांसारिक सुखों के भोग तथा अनेक सामाजिक और धार्मिक दायित्वों की पूर्ति के लिए 25 वर्ष की अवधि अर्थात 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र को पर्याप्त माना है। उन्होंने इसके बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का निर्देश दिया है ताकि व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर संन्यास के लिए अपने को तैयार तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। इसमें रहकर व्यक्ति आत्मशुद्धि तथा जन कल्याण संबंधी कार्यों का संपन्न करता है और विद्यादान द्वारा ऋषि से उऋण होता है। वानप्रस्थ आश्रम जंगल में कुटिया बनाकर बिताया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सांसारिक मोह और बंधन से मुक्त होने के लिए केवल परिवार का ही नहीं अपितु ग्राम और नगर का भी परित्याग कर देना चाहिए। यह धीरे धीरे सन्यासी बनने की तैयारी है। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिकता से विरक्ति और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करता है ताकि वह अपने को सन्यास के लिए पूरी तरह तैयार कर सके। स्वेच्छा पूर्वक घर बार के मुँह का त्याग, सादा सरल पवित्र और सेवा युक्त जीवन बिताना वानप्रस्थी का लक्ष्य है। इस आश्रम में पत्नी को भी साथ ले जाया जा सकता है। शास्त्रों ने ऐसा विधान इसलिए किया है कि एकाएक परिवार के मुँह का त्याग करना संभव नहीं होगा। वानप्रस्थ आश्रम का जीवन। इस आश्रम में प्रवेश के बाद व्यक्ति जंगल में कुटिया बनाकर रहता तथा सभी सांसारिक सुखों का पूर्णतः परित्याग कर देता है। वह कंद मूल और फल खाकर एक वक्त भोजन करता है। वह निष्काम कर्मयोगी हो जाता है अर्थात जन कल्याण संबंधी कार्यों को करता है। जन कल्याण की भावना के कारण वह पूरे संसार को अपना परिवार समझने लगता है। वह जटाधारी बढ़ाकर मृग छाला या वृक्षों की छाल पहनता तथा जमीन पर सोता है। शारीरिक सुख की प्रति उदासीनता प्रकट करने के लिए वह ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के सामने बैठकर तपस्या करता है। वह यज्ञादि करता है तथा सदैव अतिथि सत्कार के लिए अपने को तैयार रखता है। वह पंच महायज्ञ करता तथा अपने भोज पदार्थों से आहुति देता है। वह ब्रह्मचर्य व्रत को पूरा करता हुआ वेदा अध्ययन करता तथा आत्मा परमात्मा इहलोक और परलोक संबंधी गुण बातों को जानने के लिए चिंतन करता रहता है। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य। सांसारिक मोह माया से मुक्ति तथा संन्यास आश्रम के लिए अपने को तैयार करने के उद्देश्य से वानप्रस्थी को निम्नलिखित कर्तव्य करने चाहिए। नंबर एक, उसे सभी का मोह छोड़कर सादा सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अन्य का त्याग कर कंद मूल फल खाना चाहिए। मांस और मीठी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए। सगे संबंधियों का मोह छोड़कर संसार के प्रत्येक प्राणी को अपना समझना तथा उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इंद्रिय संयम रखना तथा जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन, यज्ञ आदि तथा वेदा अध्ययन करना चाहिए। तप के लिए पैर के अगले हिस्से पर दिन भर खड़ा रहना, वर्षा ऋतु में भीगते हुए खड़ा रहना तथा जाड़े के दिन में गीले कपड़े पहनना चाहिए। उसे गौ सेवा तथा अतिथि सत्कार करना चाहिए। वानप्रस्थ का महत्व। इसके निम्नलिखित महत्व है। इस आश्रम में आत्मशुद्धि के साथ साथ लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति होती है। वानप्रस्थी अपने जीवन के अनुभव और त्यागमय आदर्शों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस आश्रम में प्रदान करने के कारण शिक्षा राजनीति से मुक्त होती है तथा छात्र का मानसिक और नैतिक विकास होता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें तैयारी की जाती है। नंबर चार, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जीवन के कर्तव्य एवं महत्व। संन्यास मानव जीवन यात्रा का अंतिम आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपना स्वतत्व समाप्त कर अथवा वसुधैव है कुटुम्बकम का व्रत लेकर परिवारजक का जीवन बिताता है। वह आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर साधन में लीन रहता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त हो तथा अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात वानप्रस्थी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। संन्यास आश्रम का जीवन। इस जीवन में प्रवेश करने पर वानप्रस्थी अपने शेष वस्तुओं का भी परित्याग कर देता है। यहाँ तक कि वह अपना नाम बदलकर दूसरा नामकरण करता है। अपने को समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त कर वह परिवारजक बन जाता है। वह एक स्थान पर कुटिया बनाकर नहीं रहता क्योंकि मनु के निर्देशानुसार उसे पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। डॉक्टर कपाड़िया ने लिखा है कि वह अपने को जंगल तक सीमित नहीं रखता था। वरन गांव गांव जाता था और अपने उदाहरण और उद्देश्यों से समाज को प्रेरित करता था। जिस आश्रम में केवल एक पुरुषार्थ मोक्ष का पालन किया जाता है, वह आत्मचिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। अपनी आत्मा में रत रहते हुए वह ब्रह्मा की साधना करता है। यह भौतिक जगत से दूर रहकर आध्यात्मिक जीवन में पहुंच जाता है। वह अपने पास कुछ नहीं रखता तथा दिन में केवल एक बार थोड़ी सी भिक्षा मांगकर भोजन करता है। वह केश काट देता है तथा मोटा वस्त्र पहनता है। वह पेड़ की छाया के नीचे सोता है। संन्यास आश्रम के कर्तव्य। सन्यासी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। नंबर एक, उसे अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए तथा भोजन के लिए दिन में एक बार भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे अधिक भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। जहां लोग भोजन कर चुके हों वहां भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि वह ना मिले तो उसे उदास नहीं होना चाहिए और भिक्षों की छाया के नीचे सोना चाहिए। नंबर दो, उसे एक स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए बल्कि जन कल्याण के लिए गांव-गांव घूमना चाहिए। नंबर तीन, उसे गृह घृणा मोह से मुक्त होकर समस्त प्राणियों के लिए हानि रक्षित होना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने कठोर वचनों को धैर्य पूर्वक किसी के कठोर वचनों को धैर्य पूर्वक सहना चाहिए। मन में कभी क्लेश नहीं करना चाहिए। सुख दुख के प्रति सखा संभाव रखना चाहिए तथा आत्म सुख के लिए किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। सांसारिकता से विरत होना चाहिए। नंबर पांच, सभी जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए तथा किसी के प्रति क्रोध ना कर सभी को वरदान देना चाहिए। उसे दृष्टि से पवित्र कर पैर रखना चाहिए। जल को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए। छत से पवित्र कर शब्द बोलना तथा ज्ञान से पवित्र कर आचरण करना चाहिए। गहन चिंतन द्वारा आत्मा और परमात्मा संबंधी गुण रहस्यों का पता लगाना चाहिए। उसे सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति समझनी चाहिए। संन्यास आश्रम का महत्व। अन्य आश्रमों की तरह संन्यास आश्रम भी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है जिससे उसके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। कुछ लोगों का यह आरोप है कि संन्यास आश्रम का सामान्य कल्याण से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने को मात्र मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित कर लेता है। इस प्रकार की आलोचना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा वे ही लोग करते हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यह संस्कृति मानवतावादी है। प्रत्येक आश्रम में आध्यात्मिकता और मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संन्यास आश्रम वसुधैव कुटुम्बकम के महान लक्ष्य की पूर्ति करता है। डॉक्टर कपड़िया के अनुसार वास्तव में वह सन्यासी अपनी विस्तृत मानवीयता सहित समाज को भली प्रकार प्रभावित करने और मार्गदर्शन के योग्य होता था। वह व्यवहारिक रूप से जंगल में ही नहीं रहता था बल्कि ग्रामों का भ्रमण करता था तथा अनेक स्वयं के उदाहरण और शिक्षणों द्वारा समाज को सद्वृत्तियों की ओर प्रोत्साहित करता था। वानप्रस्थ और संन्यास समाज में तनाव समाप्त करते हैं। इन आश्रमों में प्रवेश करने वाले व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद अपने को सांसारिक उत्तरदायित्व और अधिकारों से मुक्त कर लेते हैं जिससे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष की कोई स्थिति नहीं रह जाती। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने को मानसिक तनाव से मुक्त कर लेता है। आश्रम का अर्थ। आश्रम व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। आश्रम के अर्थ तथा उनके विभाजन पर प्रकाश डालने के पश्चात आश्रम व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट और सरल हो जाता है। आश्रम के अर्थ और स्वरूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह हिंदू सामाजिक संगठन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की जीवन यात्रा को योजनाबद्ध ढंग से कई भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग के लिए आयु की एक सीमा और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। व्यक्ति के आत्मिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन के लिए इस व्यवस्था को हिंदू सामाजिक संगठन में स्थान दिया गया है। यह मनुष्य जीवन का वह कार्यक्रम है जो उसके जीवन को कुल चार भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले वह ज्ञान प्राप्त करे, फिर संसार की वास्तविकताएं भोगे, तदंतरन संसारिक झंझटों से अपने को दूर रखकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करे तथा अंत में उसी परम सत्य की खोज में अपना उत्सर्ग कर उसी में एकाकार हो जाने के लिए प्रयत्नशील हो। यही मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धीरे धीरे तैयार करने की सुविचारित योजना ही आश्रम व्यवस्था है। विशेषताएं: यह ज्ञान भोग वैराग्य और परम सत्य की खोज के लिए उत्सर्ग के बीच संतुलन का एक कार्यक्रम है। यह सांसारिक और माध्यमिक कर्तव्यों के आधार पर मानव जीवन को चार भागों में बांटता है। यह योजना आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का एक अनूठा संयोग है। आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन का वह क्रमबद्ध इतिहास है जिसका उद्देश्य जीवन यात्रा को विभिन्न स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर पर मनुष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस भांति तैयार करना है कि वह जगत की वास्तविकताओं और क्रियात्मक जीवन की अनिवार्यताओं से गुजरता हुआ अंतिम लक्ष्य पार ब्रह्मा या मोक्ष प्राप्त कर सके। नंबर चार, यह चारों पुरुषार्थों की पूर्ति की योजना या साधना भी है। नंबर पाँच, मनोनैतिक व्यवस्था भी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की अपनी आयु के विभिन्न स्तरों पर उनकी रुचि के अनुसार पृथक पृथक दायित्वों को निर्वाह करते हुए मोक्ष रूपी अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना होता है। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी उत्पत्ति वैदिक कालीन है, परंतु इस तथ्य की प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं है। वेदों में आश्रम जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हो सकता है कि उस काल में ही इस प्रकार की व्यवस्था के लिए विचार शुरू हो गया हो, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है कि इसमें इस व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। छंदोग्य उपनिषद में और मनुस्मृति में आश्रम व्यवस्था का प्रारंभिक रूप देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। प्रारंभ में केवल तीन आश्रमों का उल्लेख मिलता है और उसमें भी क्रमबद्धता का अभाव है। छंदोग्य उपनिषद में केवल तीन आश्रमों का उल्लेख है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। मनुस्मृति काल के बाद की इनकी संख्या चार हो जाती है तथा ब्रह्मचर्य आश्रम को पहला आश्रम स्वीकार किया जाता है। जबाल उपनिषद में इस व्यवस्था का सुव्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था का महत्व अथवा हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रमों का महत्व। अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से मानव जीवन को व्यवस्थित ढंग से निर्देशित और संचालित करने या यूं कहा जाए कि व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हिंदू जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका सामाजिक जीवन सामान्य कल्याण से कोई संबंध नहीं है। यह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके समाजीकरण की ओर भी संकेत करती है। अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास कर वह मानवता के संवर्धन तथा समस्त मानव के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। यह परमार्थी व्यवस्था है। इसके महत्व को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, मानव जीवन का समुचित विकास। बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से समन्वित विकास होने पर ही मानव जीवन का समुचित विकास हो सकता है। इनमें से किसी भी पक्ष की उपेक्षा करने से विकास समुचित और समन्वित नहीं होगा। आश्रम की परिकल्पना के पीछे मानव जीवन के समुचित विकास का उद्देश्य ही कार्य कर रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में क्रमशः उसके भौतिक विकास की व्यवस्था की गई है। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में नैतिक, आध्यात्मिकता और सामाजिक विकास की व्यवस्था है। मनुष्य के उचित और समन्वित भौतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए उसकी विभिन्न अवस्थाओं के अलग अलग धर्म निर्धारित कर दिए गए हैं। नंबर दो, सर्वोत्तम बौद्धिक विकास। आश्रम व्यवस्था से मनुष्य का सर्वोत्तम बौद्धिक विकास हो सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मचर्य की 25 वर्ष की अवधि ज्ञानार्जन के लिए निर्धारित की गई है, जो दोष रहित शिक्षा प्रणाली को जन्म देता है। इस अवस्था में ज्ञानार्जन के लिए इतना लंबा काल निर्धारित किया गया है, ज्ञानार्जन की क्रिया यही रुक जाती है। गृहस्थ आश्रम में वह धार्मिक कार्यों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उनका उसका ज्ञान और समृद्ध होता है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि की इतनी सुनियोजित व्यवस्था के कारण व्यक्ति का सर्वोत्तम बौद्धिक विकास हो सकता है। नंबर 3, मानवीय गुणों का विकास। आश्रम व्यवस्था विभिन्न आश्रमों के धर्म के माध्यम से सरलता, पवित्रता, निष्ठा, त्याग, सहिष्णुता, सेवा, समानता, बंधुत्व, उदारता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता जैसे मानवीय गुणों को जन्म देती है। इन गुणों ने भारतीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा है अपितु उसे समृद्ध भी बनाया है। नंबर 4, मानसिक स्थिरता में सहायक। आश्रम व्यवस्था के कारण समाज में तनाव और संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा मानसिक स्थिरता की स्थिति पैदा होती है। प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं, जिन्हें व्यक्ति को क्रमबद्ध ढंग से करना पड़ता है, अर्थात उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के कर्तव्यों का पालन करेगा। इस सुनियोजित व्यवस्था के कारण उसके मन में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है। नंबर 5, समान कल्याण। यद्यपि आश्रम व्यवस्था की स्थापना के पीछे व्यक्ति के विकास का उद्देश्य कार्य कर रहा है, तथापि वह व्यक्तिगतवादिता के दोषों से मुक्त है। प्रत्येक आश्रम अपने धर्मों के कारण असामान्य कल्याण से संबंध है। नंबर 6, समष्टिवादी संस्कृति का विकास। प्रभु का कहना है कि व्यक्ति और समूहों की पारस्परिक निर्भरता के समन्वय में आश्रम व्यवस्था का महत्व सर्वोपरि है। विभिन्न आश्रमों में व्यक्ति और समूह के कार्य एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर है, जिसके फलस्वरूप हमारे समाज में एक समष्टिवादी संस्कृति का विकास हो सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति समाज के प्रति उदासीन रहता है, परंतु समाज उसके भरण पोषण का ध्यान रखता है। गृहस्थ आश्रम में वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन तथा उसके लिए त्याग करता है। वानप्रस्थ में दोनों एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते हैं। संन्यास आश्रम में भी यही स्थिति है। इस प्रकार प्रारंभ से अंत तक पारस्परिक निर्भरता का अंत नहीं होता। निष्कर्ष, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन तथा समाज को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के रचनाकार ऋषि महर्षि इस बात में विश्वास करते थे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के बिना न तो समाज संगठित हो सकता है और न समाज के संगठित हुए बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही विकसित हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही इन्होंने आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना की। आश्रम व्यवस्था हमारे समाज में व्यवहारिकता का रूप। अधिकतर विद्वानों का यही कहना है कि इस व्यवस्था को केवल सैद्धांतिक मान्यता ही मिल पाई है, इसे व्यवहार में नहीं अपनाया जा सका। प्रश्न उठता है कि आखिर यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप में क्यों नहीं ग्रहण सकी। इसके निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा की जो व्यवस्था है वह केवल सैद्धांतिक और धर्म प्रधान है। किसी भी समाज की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती है। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को सामान्य रूप से अपनाने का प्रचलन नहीं हो पाया। आज के औद्योगिक युग में तो इस प्रकार की शिक्षा किसी भी प्रकार व्यवहारिक नहीं हो सकती। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पर इतने सामाजिक दायित्व सौंपे गए हैं कि वह उनका पूरी तरह पालन नहीं कर सकता है। इस कारण आश्रम व्यवस्था को सामान्यतः केवल सैद्धांतिक मान्यता ही मिल सकी है। वानप्रस्थ भी सामान्यतः व्यवहारिक इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति के लिए 50 वर्ष की आयु में परिवार का त्याग करना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह माया का इतनी कम उम्र में स्वाभाविक ढंग से परित्याग नहीं कर सकता है। अपवाद स्वरूप एक दो व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। वृद्धावस्था में शरीर इतना जर्जर और शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि सभी व्यक्तियों के लिए संन्यास आश्रम का कठोर जीवन अपनाना संभव नहीं है। एक दो व्यक्ति उस प्रकार का कठोर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों और आश्रम व्यवस्था के दायित्व के बीच समन्वय नहीं हो सकता। आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत। प्रत्येक व्यवस्था अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन आदर्शों पर निर्भर करती है। ये मूल्य और आदर्श उस व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत होते हैं। व्यक्तिवादिता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और सामान्य विकास के बीच समन्वय भारतीय संस्कृति का सदैव लक्ष्य रहा है। इसकी पूर्ति के लिए ऋण पंच महायज्ञ पुरुषार्थ संस्कार तथा वर्ण आश्रम व्यवस्था आदि को हिंदू जीवन दर्शन में स्थान दिया गया है। ऋण पंच महायज्ञ पुरुषार्थ और संस्कार ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर आश्रम व्यवस्था आधारित है। नंबर एक, ऋण। हिंदू समाज दर्शन में इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि व्यक्ति कतिपय चर और अचर तत्वों का ऋणी है, जिनसे ऋण होना उसका नैतिक कर्तव्य है। पांच प्रकार के ऋण स्वीकार किए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, प्रति ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। अहमवादी प्रवृत्ति पर रोक के लिए इन ऋणों को मान्यता प्रदान की गई है। इन्हें इसलिए मान्यता प्रदान की गई है कि व्यक्ति के मन में यह भावना पैदा हो सके कि उसके पास जो कुछ है वह कई तत्वों के ऋण स्वरूप है। जल, भूमि, वायु तथा अन्य प्राकृतिक साधन उसे ईश्वरीय शक्ति की कृपा से उपलब्ध है, अतः देवताओं का ऋणी है। ऋषियों के तप, ज्ञान और उनकी साधना के कारण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अतः वह उनका ऋणी है। माता पिता उसका भरण पोषण उसके विकास में योगदान करते हैं, अतः वह उनका प्रति ऋणी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति समाज के लोगों की सहायता पर निर्भर करता है, अतः वह उनका ऋणी है। इससे अतिथि ऋणी की संज्ञा प्रदान की गई है। अंत में वह कुछ ऐसी शुभ आत्माओं के प्रति ऋणी है जो उसकी समय समय पर रक्षा करती है, इसे भूत ऋण कहा गया है। नंबर टू, पंच महायज्ञ। इन ऋणों से ऋण होने के लिए हिंदू जीवन दर्शन में पांच महायज्ञों को मान्यता प्रदान दी गई है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पति यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा भू यज्ञ। देवताओं की वंदना, उपासना और साधना द्वारा व्यक्ति के देव ऋण से ऋण होता है। इसे देव ऋण देव यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान में वृद्धि, वेदा अध्ययन तथा ज्ञान के प्रसार से वह ऋषि ऋण से ऋण होता है, इसे ऋषि यज्ञ कहा जाता है। माता पिता की सेवा, उनकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म तथा योग्य संतान पैदा कर उसके भरण पोषण के जरिए व्यक्ति प्रति यज्ञ करता है, ऐसा कर वह प्रति ऋण से ऋण होता है। अतिथियों की सेवा तथा समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह कर वह अतिथि यज्ञ नियज्ञ करता है तथा अतिथि ऋण से मुक्त होता है। वनस्पति की रक्षा पशुओं को भोजन देकर तथा छोटे जीवधारियों की रक्षा कर व्यक्ति भूत यज्ञ करता है। नंबर तीन, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इनकी विधिवत पूर्ति आश्रम व्यवस्था में ही हो सकती है। प्रभु ने पुरुषार्थों को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार कहा है, साइको मोरल बेसिस। नंबर चार, संस्कार। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार संस्कारों का पूरा करने से ही व्यक्ति का जीवन परिष्कृत हो सकता है। आश्रम व्यवस्था में ही संस्कारों, विधि विधानों और कर्म कांडों की विधिवत पूर्ति हो सकती है, अतः ये भी आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत है। आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य। हिंदू जीवन दर्शन ने आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना निरुद्देश नहीं की है। इसके पीछे कार्य कर रहे उद्देश्यों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य। आश्रम व्यवस्था के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत ये बातें आती हैं। हिंदू जीवन दर्शन व्यक्ति के विकास और सामान्य कल्याण के बीच समन्वय चाहता है, यह उसका पहला उद्देश्य है। व्यक्ति कल्याण को विश्व कल्याण में परिणित कर देना, यह इसका दूसरा उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्तिगत कल्याण की भावना कार्य करती है। गृहस्थ आश्रम में वह पारिवारिक कल्याण, वानप्रस्थ आश्रम में ग्रामीण या सामुदायिक और संन्यास में विश्व कल्याण की भावना में बदल जाती है। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के बीच समन्वय इसका तीसरा सामान्य उद्देश्य है। मिश्रित आश्रम इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान, गृहस्थ आश्रम में कर्म तथा वानप्रस्थ और संन्यास में भक्ति की पूर्ति होती है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास भी इसका उद्देश्य है। विभिन्न आश्रम इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। भोग और त्याग के बीच समन्वय इसका पांचवा सामान्य उद्देश्य है। विभिन्न आश्रम इसकी पूर्ति करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। ऋण पंच महायज्ञ पुरुषार्थ और संस्कारों की पूर्ति इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं। विभिन्न आश्रमों द्वारा इनकी विधिवत पूर्ति होती है। आश्रम व्यवस्था तुलनात्मक महत्व। आश्रम के संबंध में ये दोनों ही अत्यंत गुण प्रश्न है। वास्तव में चारों आश्रम जीवन काल के चार क्षेत्रों का संकेत करते हैं। यदि किसी को एक छोड़ दे तो अगले का समुचित विकास नहीं हो सकता। बिना धर्म साधना के अर्थ एवं काम का क्षेत्र अधूरा रह जाएगा और बिना इनकी पूर्ति के मानव संतुष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार वह इनके अभाव में वानप्रस्थ आश्रम का धर्म इंद्रिय निग्रह का निर्वाह ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक वह अपने गुण पूर्णतया साध नहीं लेता तब तक संन्यास के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार चारों आश्रमों का परस्पर सापेक्षिक महत्व है। बिना एक के दूसरे का विकास समुचित रीति से संभव नहीं है। अतएव अपने अपने स्थान पर चारों आश्रमों आश्रम पूर्ण युक्ति संगत है। इसलिए यह कहना कि इनमें कौन विशेष महत्व का है बड़ा ही कठिन है। द्वितीय प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा आश्रम है जो अन्य आश्रमों के साथ कुछ विशिष्ट महत्व का है। पुरुषार्थ, ऋण और यज्ञ यही आश्रम व्यवस्था के आधारभूत स्तंभ है। जिस आश्रम में एक ही साथ इन आधारों की पूर्ति कुछ कम या अधिक होती हो वास्तव में वही आश्रम शेष की अपेक्षा अधिक महत्व का माना जाता है। ब्रह्मचर्य में केवल धर्म की ही साधना होती है। वानप्रस्थ में मोक्ष की तैयारी करते हैं, संन्यास में ब्रह्म तत्वमय हो जाते हैं। अब केवल एक बचा गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम के अंतर्गत धर्म की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इसमें व्यक्ति सभी पुरुषार्थों की जहाँ साधना करता है वही वह ऋणों का अधिक से अधिक उपभोग भी करता है तथा उनकी पूर्ति के लिए यज्ञ भी करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यही कर्म भूमि है, यही पर वह प्राय सभी आधारों को साथ लेता है तथा प्रथम तीन आश्रम धर्म का एक साथ ही किसी न किसी वंश में निर्वाह कर लेता है। यहाँ वह अपना अध्ययन चालू रखता है क्योंकि प्रति समावर्तन समारोह के अवसर पर उसे गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर यह बताना होता था कि उसने अपने ज्ञान में कितनी और वृद्धि किया है। इसके अतिरिक्त अर्थ और काम की संतुष्टि कर यही वह इंद्रिय निग्रह कर लेता है। अतएव इसके साथ ब्रह्मचर्य तथा वानप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। सीधे गृहस्थ धर्म का समुचित प्रकार से विवाह कर वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और संन्यास में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मनु ने कहा है कि यथा नदी नदः समस्ते सागरम यान्ति समस्थितिम तथैव आश्रमिनः सर्वे गृहस्थे यान्ति समस्थितिम। अर्थात जिस प्रकार सभी नदी और नद सागर में आकर गिरते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम के निवासी गृहस्थ आश्रम में ही समावेश करते हैं। वाल्मीकि ने भी कहा है कि चतुर्णामाश्रमाणाम ही गृहस्थम श्रेष्ठ उत्तमम। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है शास्त्रादिष्टे परो धर्म स्थितो गृहस्थाम आश्रम तीन। अर्थात गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना ही शास्त्र की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। निष्कर्ष: उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का सापेक्षिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण स्थान है।